हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 46। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवाशुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। शब्दात् तपस्वीभ्य तपस्वियों से अधिको योगी श्रेष्ठ है, बढ़कर है योगी। ज्ञानी भ्य ज्ञानियों से अपि भी मता माना जाता है अधिक बढ़कर। कर्मी भ्य सकाम कर्मियों की उपेक्षा च भी अधिक योगी योगी है। तस्मात् योगी भवा अर्जुन तस्मात् अतः योगी योगी भवा बनो या हो अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद, योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सत्काम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं योग का वास्तविक अर्थ। कोई कोई लोग को ऐसा लगता है कि योग का मतलब होता है कि आप साधना करो, जाके जंगल में योगी बाबा बन जाओ और है ना एक जगह पे बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस योग की भगवान बात कर रहे हैं वो क्या है कि अपनी चेतना को सत्य के साथ जोड़ने की बात। कि वास्तव में योग का मतलब होता है, जैसे वियोग का मतलब होता है तोड़ना, उस तरह योग का मतलब होता है जोड़ना। जब हम अपनी चेतना को सत्य के साथ जोड़ते हैं, परम सत्य क्या है, भगवान परम ईश्वर, उसके साथ जब जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं। अब परम सत्य क्या है तो शास्त्र तत्वदर्शी कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य क्या है, पहले ब्रह्म है, परमात्मा है और वास्तविकता उसकी एंड क्या है, भगवान है। तो अब उसके किसी भी फेस के साथ, चाहे ब्रह्म के साथ या परमात्मा के साथ या भगवान के साथ, यदि हम अपनी चेतना को जोड़ते हैं तो वो योग होता है। और उसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रह्म के साथ जब हम उस चेतना को ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं तो वो ज्ञान योग हो जाता है। उसी चेतना को जब हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो वो तपस्या हो जाते हैं। जैसे तपस्वी परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं ना, उसी प्रकार यदि हम अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो वो भक्ति भक्ति योग हो जाता है। तो यहाँ पर उस योग की बात हो रही है कि भगवान के साथ या परम सत्य के साथ अपनी चेतना को जोड़ने को योग कहते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी बताएं, जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग होती है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कर्मयोग मतलब जब आप सकाम कर्म के साथ यदि उसको जोड़ते हो तो कर्मयोग योग हो जाता है। जब चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग हो जाती है। जब आप ब्रह्म के साथ जोड़ते हो, उसको चिंतन करते हो तो ज्ञान योग, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने निष्कर्ष बता दिया कि जितने भी योग हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या कोई भी योग हो, उसमें भक्ति योग जो है वो सबसे ज्यादा परम सिद्धि है। अब इस योग में भगवान ने क्या कहा है, योगी तस्मात योगी भवार्जुन। अब इसमें भी भगवान ने तीन प्रकार के योगों के विषय में बताया है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इस श्लोक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तात्पर्य के एक एक शब्द को समझाना चाह रही हूँ। श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि। अब भगवान ने यहाँ पर बहुत सारे योग बताए, तपस्वी भी हो अधिक हो योगी, यानी तपस्वी कौन सा योग होता है, ये जो व्यक्ति सिद्धियों की कामना करने के लिए तपस्या करते हैं ना, जैसे सिद्धि कामी जिसको बोलते हैं, उसको तपस्वी कहते हैं। जो परमात्मा का ध्यान लगा के फिर कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते, तपस्वी वो अधिक हो योगी। फिर ज्ञानी भी हो मतो ज्ञानी वो भी मतो अधिक, जो ज्ञानी होते हैं यानी ज्ञान योग अपनाते हैं और भगवान की निराकार में सायुज्य में तल्लीन होना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज्ञानी, वो भी ज्ञानी से भी योगी अधिक है, अधिक श्रेष्ठ है। और कर्मी भी अधिक हो योगी, जो कर्म योगी यानी जो कार्य करते हैं, कर्म किस तरह से करते हैं, वैदिक विधि विधानों के अनुसार करते हैं। कर्मी उनको बोलते हैं जो विधि विधानों के अनुसार कार्य करते हैं, इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर आनंद लेना चाहते हैं, उनको कर्मी भी, कर्मी भी अधिक हो योगी। अब देखो सब में योगी को भगवान ने श्रेष्ठ कहा है, लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्लोक नंबर 46 को तो बहुत ही सुंदर तरीके से बयान करते हैं, तस्मात योगी बाबा अर्जुन, अर्जुन को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपको योगी बनना है, लेकिन ये नहीं देखते कि श्लोक नंबर 47 में भगवान ने क्या कहा है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मतो मम, कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ योगी क्या है, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्योंकि कहा है कि जो वास्तव में भक्त होता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी होता है और योग की परम सिद्धि उसी ने प्राप्त की है, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये एक और लाइन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बताई, वो क्या, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। समझ में आया, देखो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी भ्योपि मतोधिक, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मीभ्यस्याधिको योगी, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, तस्मात् योगी भवार्जुन, इसे योगी बनो। लेकिन ये भगवान ने नहीं कहा है कि भक्ति भक्ति से भी भक्तों से भी अधिक योगी है, ऐसा तो नहीं कहा। तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा भगवान ने कि भक्तों से भी अधिक श्रेष्ठ है, नहीं लिखा। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है भगवान ने, किंतु इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी क्लियर करके बता रहे हैं। वास्तव में यदि श्रीला प्रभुपाद जी इतने क्लियर इन शब्दों को हमें नहीं बताते ना, तो शायद भगवान के एक शब्द को भी समझना संभव नहीं था। श्री प्रभुपाद जी बोलते भक्ति योग से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योगी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, यानी तपस्वी भी हो अधिक हो योगी। अगर तपस्या आप कर रहे हो, आप अपनी वास्तविकता नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और अंश होने के कारण मुझे भगवान की सेवा करनी। यदि ये समझ में नहीं आ रहा, कोई तपस्या कर रहा है केवल इंद्रिय तृप्ति की भोग की वासना पूरी करने के लिए, तो वो तपस्या उसका कोई भी उसे लाभ नहीं होने वाला। उसी तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण। अगर आप ज्ञान योगी बन रहे हो लेकिन समर्पित नहीं हो भगवान को, केवल भगवान के अंदर तल्लीन होने के लिए अब ज्ञान योग का मार्ग स्वीकार किया है, तो वो अपूर्ण है। और सकाम कर्म, यदि आप कर्म कर रहे हो, सकाम कर्म फल वाले, लेकिन यदि आप वो उन कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो कर्म आपको बंधन का कारण बनेंगे। तो समय जाया हो रहा है आपका, कोई लाभ तब तक किसी भी कार्य का नहीं होता जब तक कोई कार्य आप भगवान के साथ भगवान को केंद्र बनाकर नहीं करते हो ना, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे उपासना योग हो, चाहे कोई भी योग हो, कर्म योग हो। यदि भगवान उसका केंद्र नहीं है तो वो सारे योग आपके किसी भी काम के नहीं। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया वास्तविक जो योग जिसकी जो सबसे बढ़कर है वो है कृष्ण भावनामृत। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित स्वरूप भक्ति योग है, और इसकी व्याख्या अब यहाँ पर भक्ति योग की ही श्रेष्ठता बताई गई है। इसी को हम सिद्ध करेंगे इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए। गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। रघुनाथन वितंतं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादास् सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अत्यंत ही सुंदर शब्द है भगवान के। भगवान कहते हैं तपस्वी विहो दिको योगी। जो योगी होता है वो तपस्वी से बहुत आगे है। और आगे कहते हैं ज्ञानी भ्योपि मतोधिका। जो ज्ञानी होते हैं उससे तो और भी आगे हैं। कौन? योगी। और आगे कहते हैं कर्मी भ्यस्याधिको योगी। जो योगी होता है वो कर्मी से तो और भी ज्यादा आगे है। तस्माद् योगी भवार्जुन। इसलिए आपको योगी बनना। अब यहाँ पर भगवान ने तीन बताया ना, कर्मयोग बताया, कर्मी से बताया, ज्ञानी से बताया, तपस्वी से बताया। यानी सबसे लो क्वालिटी का कौन है? कर्मी। क्योंकि कर्मी जीव क्या करता है, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई सत्काम कर्म करता है और उस इच्छा की पूर्ति जब हो जाती है इस संसार में पूर्ति करना चाहता है या फिर वो स्वर्ग लोक जाना चाहता है। यानी कर्मी जो होता है वो इंद्रिय भोग प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कर्मी के अंदर एक अच्छी बात होती है, पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि वो शास्त्रों के अनुसार अपराधों से बचता है और पुण्य कर्म करता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर भगवान ने केवल पुण्य कर्म वालों की बात की है, क्योंकि कर्मी से नीचे वाला स्टेज नहीं बताया। तीन स्टेज बताया, कर्मी, ज्ञानी, उसके बाद तपस्वी। अब पहला है कर्मी, यानी भगवान ने कहा सबसे लो क्वालिटी का व्यक्ति कौन सा होता है? जो कर्मी होता है। लेकिन यहाँ से अब हमें समझना है कि उससे भी ज्यादा लो क्वालिटी का क्या कौन होता है? जो कि विकर्मी होता है। विकर्मी का क्या मतलब होता है? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से केवल इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, अपराध करते हैं, वो कार्य करते हैं जो कि शास्त्रों में मना किए हुए हैं, उनको विकर्मी कहते हैं। अब विकर्मी क्या करता है? वो कार्य करता है लेकिन ऐसा अपराधमय कार्य करता है, तो इसके बदले में उसको क्या प्राप्त होने वाला है? डेफिनेटली मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा उसको, डेफिनेटली उसको जानवर का जन्म मिलेगा। पहले वो नरक में जाएगा, उसके बाद जानवर का जन्म मिलेगा। जानवर के जैसे जल जाना वाला श्याणी स्थावर लक्ष्य विषम दिक्रमिया रुद्र संख्या का ऐसे करते 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 कभी पता नहीं कभी उसके ये ना 84 लाख योनियां समाप्त होंगी और उसके बाद उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि अपराध है ना। अब अपराध जो करेगा उसको जाहिर सी बात है उसको उसकी परिक्रिया मतलब उसका रिएक्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान ने विकर्म की बात नहीं की, लेकिन क्योंकि हम क्रम से चलेंगे तो सबसे ज्यादा लो क्वालिटी का व्यक्ति कौन है, जो विकर्मी होता है, यानी जो शास्त्रों की अवहेलना करता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, कर्मी। कर्मी भी इंद्र तृप्ति करना चाहता है, इंद्रिय भोग प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो अपराध नहीं करता, वो शास्त्रों के अनुसार अपराधों से बचता है, पुण्य कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, और उसके कारण वो इंद्रिय भोग भोगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वासना बनी हुई है इंद्रिय भोग की, अब देखो सबसे ज्यादा बड़ा जीव का अपराध क्या है कि वो भोग भोगना चाहता है। जीव के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो यही एक अपराध है कि वो भोग भोगना चाहता है, और यही जीव को पतन कराता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्योंकि कर्मी लोग जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, तो कर्मी सबसे नीचे है, क्योंकि वो करेगा फिर उसको प्राप्त भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर क्षीण पुण्य मृत्यु लोक कमीशन दी, फिर जन्म मृत्यु जरा गया थी, फिर वापस से अच्छे से कर्म करके फिर वापस से मुश्किल से जाएगा स्वर्ग में वापस। तो मतलब ये इतना अच्छा मतलब बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कर्मी से ज्यादा कर्म कांड से ज्यादा आगे जाने रहा है। अब देखो वेदों में मुख्यतः तीन बातें तीन कांड बताए गए, एक कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है, और तीसरा उपासना कांड है। कर्म कांड में क्या होता है, कर्म करो आप, ठीक है, कर्म जिस तरह हम कर्मयोग अभी कर्म कांड पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, आप सब काम कर्म करते हो उसके बाद आप स्वर्ग जाते हो। ज्ञान कांड में क्या होता है, आप कर्म का त्याग कर देते हो, लेकिन ज्ञान कांड में आप एक चीज चाहते हो केवल कि मुझे निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है, केवल ये, मतलब भौतिक वस्तु किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, किसी की लालसा नहीं होती है, सबका परित्याग किया जाता है, लेकिन एक इच्छा हृदय के अंदर जो कि सबसे खतरनाक इच्छा है। जैसे यूं समझो कि इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं को एक लड्डू समझकर उसका परित्याग कर दिया और आध्यात्मिक जगत में रखी हुई लड्डू की प्लेट को हड़प करना चाहता है, मतलब इतनी इच्छा बढ़ी हुई है कि वो भगवान बनना चाहता है, वो क्या है, ज्ञान कांड, और वो सायुज्य में मिलना चाहते हैं। उसके बाद है उपासना कांड। उपासना कांड का मतलब होता है भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर अभी हमने कर्मी विह का पढ़ा, उसके बाद आता है ज्ञानी। ज्ञानी भी मतोदिक, ज्ञानी मतलब जो सायुज्य में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या है, तपस्वी व्योदिक, तपस्वी। तपस्वी का मतलब होता है जो भगवान की मतलब हृदय में परमात्मा का ध्यान करके तपस्या करते हैं। तो तपस्या करके उनका एम क्या होता है कि वो योगिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तो ज्ञानियों से भी ज्यादा अधिक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न क्लियर करते हुए चले कि ज्ञानी लोग की तो भौतिक सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, उनकी केवल एक ही इच्छा बाकी बची है कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। फिर तपस्वी जो कि सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञानी से अधिक कैसे हो सकता है, हाँ, ज्ञानी की तो भौतिक इच्छाएं नहीं होती है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि ज्ञानी से तपस्वी जो सिद्धि चाहता है वो श्रेष्ठ है। वो क्यों, क्योंकि ज्ञानी अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता है, तो वो इस भौतिक, वो समझता है कि मेरा अस्तित्व जो है वो भगवान में मिलकर एक हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी इसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, कि आध्यात्मिक आत्महत्या है, आप अपने अपने वजूद को समाप्त करना चाहते हो और वास्तविकता जो तुम्हारी है उससे नकारना चाहते हो। वास्तविकता क्या है कि हर एक जीव इंडिविजुअली भगवान का सेवक है, उसे वो कार्य करना है, लेकिन वो क्योंकि अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं अपनाना चाहता इसलिए वो तपस्वी से श्रेष्ठ है। वास्तव में तपस्वी भी ना इच्छा रखता है, क्योंकि वो योग सिद्धि चाहता है। उसे भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती है, योग सिद्धि चाहता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को स्वीकार करता है। हृदय के अंदर जो परमात्मा का स्वरूप है उसको स्वीकार करता है। ज्ञानी तो किसी स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते, वो तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इस श्लोक को हम एक अलग दूसरे श्लोक से के साथ कंपेयर करके समझेंगे, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल है विषय बांड। अब जो कर्म कांड है यानी कर्म योग और ज्ञान कांड जो है यानी ज्ञान योग, केवल है विषय भांड। ये सिर्फ, और विषय का मतलब होता है जहर और भांड का मतलब होता है बर्तन, ये जहर के बर्तन है। यानी इनके अंदर यदि आप कुछ भी रख के खाओगे ना तो जहरीला होगा, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं बता रहे आपको। कर्म कांड के द्वारा आप अपने शरीर को स्वतंत्र सुखी करना चाहते हो, और ज्ञान कांड के द्वारा क्या चाहते हो, इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहते हो। तो ये सब केवल जहरीला अंश है। भक्त को, भगवान के भक्त ऐसी इच्छा नहीं करते। इसीलिए शास्त्र कहता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अब यहाँ पर इस श्लोक में भी तीन व्यक्तियों को, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, इन तीनों को अशांत कहा गया। और इसी चीज को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भुक्ति का क्या मतलब होता है, कर्म कांड, जो कर्म कांड करते हैं, कर्मी जो होते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनको बोलते हैं भुक्ति। भुक्ति का मतलब होता है जो अपने फलों का भोग करना चाहते हैं। उसके बाद है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है ज्ञान योगी, जो परमात्मा में लीन हो, सॉरी ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। और उसके बाद है सिद्धि। सिद्धि का मतलब होता है जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो तपस्वी हो। यहाँ पर भी देखो तीनों को बताया ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और यहाँ पर कर्मी भी शादी को योगी। कर्मी का मतलब होता है भुक्ति, ठीक है। ज्ञान योगी, ज्ञानी व्योगी मतोदिक, जो ज्ञान योगी होते हैं यानी कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। सिद्धि का मतलब होता है तपस्वी। तो यहाँ पर भगवान ने 1, 2, 3 बताया और वहां पर 3, 2, 1 बताया। मतलब यहाँ हमारे श्लोक में भगवान ने कैसे बताया, तपस्वी से ज्ञानी अधिक है, तपस्वी भी अधिको योगी, तपस्वी से योगी अधिक है, ज्ञानियों से तो और भी ज्यादा अधिक है, और कर्मियों से और भी अधिक है। उसी तरह से भुक्ति से ज्यादा, भुक्ति यानी कर्म योगी से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, मुक्ति प्राप्त करना, जो मुक्ति की इच्छा करना चाहते हैं। और मुक्ति की इच्छा करने वालों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, वो सब अशांत है। अशांति का कारण क्या है, वास्तव में अशांति का कारण ये है कि जीव के हृदय में इच्छा है। ये इच्छा जो है वो सबसे बड़ी अशांति का कारण होता है। इसलिए यहाँ पर वो सब योगी से श्रेष्ठ नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसका मतलब ये है कि कृष्ण के, यहाँ पर कृष्ण भक्त निष्काम यानी कि कृष्ण का जो भक्त होता है उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक जीव जिंदा है तब तक इच्छा होना अनिवार्य है। जीवन का अर्थ है कामना। हम इच्छा करते हैं, समझो हम जी रहे हैं, समझो हम कोई ना कोई इच्छा करेंगे अवश्य। ये जैसे हमारे पास ये जो किरताल रखी हुई है वो निर्जीव है, इसलिए वो इच्छा नहीं करती। कोई भी भौतिक वस्तु, ये माइक्रोफोन है या ये सेट है, टेबल है, ये जो भी है, वो इच्छा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जीवित नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है। तो निष्काम का मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि वो इच्छा नहीं करता। लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्त क्या करता है, जब जीव अपनी इच्छा को तोड़कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है, तो उसे निष्काम कहा जाता है। यानी कि अपनी देह की या आत्मा को संतुष्ट करने की, परमात्मा में मिलाने की, या इस देह को संतुष्ट करने की कोई भी इच्छा ना रहे। वास्तव में हम सदैव बोलते हैं जीवन की परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का मतलब केवल इतना है कि हम अपनी समस्त इच्छाओं को, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं का परित्याग कर दें, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था। अर्जुन बोल रहा था, कृष्ण मैं कैसे मारूं, ये सब तो मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, इनको मैं, इनसे तो मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए बदतमीजी से, और तुम कहते हो, तुम चाहते हो कि मैं इन्हें मार डालूं। मैं कैसे मारूं, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। भले ही ये लोग को नहीं पता कि कितना अपराध कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता है, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को कहा, उत्तिष्ठ तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, मेरी आज्ञा है तुम्हें युद्ध करना। भले अर्जुन की आज्ञा नहीं थी, लेकिन कृष्ण चाहते थे तो अर्जुन ने युद्ध किया। उसी प्रकार गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती। वास्तव में प्रेम को समझना है हमें। गोपियां नहीं चाहती है कि कृष्ण एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर जाए। इवन जब कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे वन में, तब भी गोपियां एक, ये जो आधा दिन होता था ना, सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक, उसकी एक एक क्षण जो है वो गोपियों के लिए एक एक वर्ष की तरह लगता था, युगों की तरह लगता था। तो कृष्ण, गोपियां कभी भी नहीं चाहती थी कृष्ण एक क्षण के लिए भी उनसे दूर हो। लेकिन जब कृष्ण ने ये डिसाइड किया कि मुझे मथुरा जाना है फॉरएवर, तो गोपियां जानती थी कि कृष्ण की इच्छा है, तो भले ही हमारी उसमें इच्छा नहीं हो, भले हमारा हृदय टूट रहा हो, भले हम मर रहे हो, लेकिन कृष्ण की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये है प्रेम। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्त क्यों सुखी होता है? क्योंकि उससे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं होती, बल्कि किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होती। उसका केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं कैसे अपने कृष्ण को सुखी कर सकूं। तो इसीलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस श्लोक में भगवान हमें क्या बता रहे हैं? तपस्वी भ्योधिको योगी। तपस्वी वो होता है जो परम सत्य के केवल परमात्मा स्वरूप को बिलीव करता है। परमात्मा है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, उससे अधिक है योगी। तपस्वी भ्यो अधिको योगी। अब उसके बाद कहते हैं ज्ञानी भ्योपि मतोधिका। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो कि भगवान के केवल ब्रह्म स्वरूप को स्वीकार करता है। वास्तव में वो ज्ञान के सबसे नीचे की धरातल पर होता है, क्योंकि वो भगवान के दूसरे फेसेस को स्वीकार ही नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ, उसको ज्ञानी कहा जाता है, बोला उसको ज्ञानी जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बोला जाता है, लेकिन उसको केवल एक ही फेस पता होता है, क्या? ब्रह्म इतिश, ब्रह्म पता होता है, परमात्मा पता नहीं होता, भगवान पता नहीं होता। इसलिए वो ज्ञान के सबसे निम्न धरातल पर होता है। और ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन होता है? तपस्वी से श्रेष्ठ होता है। तपस्वी क्योंकि वो इच्छा करता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के हृदय के अंदर परमात्मा को स्वीकार करता है और परमात्मा के दर्शन करता है और उनसे सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो वो तपस्या करता है, उसको भी योगी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर भगवान उस योग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तपस्वी भी वो अधिक हो योगी, यानी तपस्या करने वाले से योगी अधिक है। अर्थात यहाँ पर जिस योग की श्रेष्ठता के विषय में कहा गया है, वो भक्ति योग है। क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा है, कर्म कांड में हो यानी सकाम कर्मों के लिए भुक्ति चाहता है, मुक्ति यानी ज्ञान कांड में रहकर भगवान के साथ एकाकार होना चाहता हो, या मुक्ति सॉरी एकाकार होना चाहता है यानी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये सब अशांत है। और शांत कौन है? कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि वो काम के अधीन नहीं है। कृष्ण कहते हैं काम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, विद्येनम वैरिणम। अर्जुन तुम सोच रहे हो यहाँ और कोई तुम्हें सामने जो दिख रहे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण अश्वत्थामा और दुर्योधन, ये तुम्हें शत्रु दिख रहे हैं, ये शत्रु नहीं है। वास्तविक शत्रु तो तुम्हारा काम है जो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हुआ। तो वास्तव में भगवान हमें बता रहे हैं कि जब तक उस काम को नहीं जीतोगे तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। और ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही है, वो तो सब वो तो काम को जीते ही नहीं है, तो उनको कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कलयुग में केवल एक ही मार्ग श्रेष्ठ है, कलाय भक्ति कलाय भक्ति कलाय भक्ति प्रसिद्ध है। कलयुग में केवल भक्ति केवल भक्ति केवल भक्ति ही प्रसिद्ध है। इसका मतलब है जो भगवान यहाँ पर जिस योग के बारे में बता रहे हैं कि ये योग श्रेष्ठ है, तो उसका मतलब होता है कि भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अभी ये श्लोक अभी हम अध्याय नंबर 6 पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो भगवान ने कई बार ये बताया है अर्जुन को कि भक्ति योग से अधिक और कोई श्रेष्ठ होगा ही हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी 8.7 में पहले भगवान ने कहा तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैशस्य संशयः। अतः अर्जुन तुम्हें समस्त कालों में कदे कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यानी भगवान ने यहाँ बताया कि सिद्धि है मुझे प्राप्त करना, और तभी संभव है जब तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अपने मन मयि अर्पित मनो बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। अर्थात भक्ति योग, भगवान ने कहा उसी मामे वैश्य संशय, उसी भक्ति योग से ही आप मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया 9.34 में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस्य मामे वैशसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायण। मन से नित्य निरंतर मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। यानी भगवान ने अपने को प्राप्त करने का एक ही मार्ग बताया है और वो है भक्ति योग। और भगवान ने साफ साफ कह दिया 11 अध्याय में भक्त्या तु अनन्यया शक्य, कि मुझे अगर प्राप्त करना है अहमेव विदुर्जुन, अगर मुझे जानना है मुझे समझना है मुझे प्राप्त करना है, एक ही विधि है भक्त्या तु अनन्यया शक्य, केवल एक ही विधि है। पहले भगवान ने बताया 11.53 में नाहं वेदेन तपसा नादानेन चेष्टया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम यत्, कि ना ही वेद पढ़ने से न तपस्या करने से न ध्यान देने से और ना ही पूजा करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ये जो भौतिक कार्य है ना, उनसे भगवान स्पिरिचुअल है, और इन जब तक हृदय की बात नहीं आती, जब तक मन की बात नहीं आती, तब तक भगवान को प्राप्त करना, भगवान को समझना, यह सब संभव नहीं है। इसी भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यायश, और भगवान ने कह दिया भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ पर जिस योग का उल्लेख है वो केवल भक्ति योग ही हो सकता है। मतलब भगवान जो कह रहे हैं तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भी उपी मतो अधिक, कर्मी भी अस्य अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्षना, यानी वास्तव में जो कृष्ण का भक्त होता है वो तपस्वी से श्रेष्ठ होता है, वो ज्ञानी से श्रेष्ठ होता है, और ज्ञानी से और भी अधिक श्रेष्ठ होता है, और कर्मी से और भी ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होता है। यानी कि अगर इसको हम ऐसे देखें, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, पहले नंबर पे क्या है कर्मी, ठीक है, और कर्मी के बाद दूसरे नंबर पे है ज्ञानी, तीसरे नंबर पे है तपस्वी, और चौथे नंबर पे है भक्त। तो भगवान क्या कहते हैं, भक्त क्योंकि चौथे नंबर पे है, सबसे ज्यादा बड़ा है। जैसे चौथा चार नंबर बड़ा होता है ना, किसी के पास एक रुपया हो, किसी के पास दो हो, किसी के पास तीन हो, किसी के पास चार है, तो चार श्रेष्ठ होता है ना। तो चार नंबर बड़ा है एक से, कर्मी से भी बड़ा होता है, चार नंबर बड़ा है दो से, यानी ज्ञानी से भी बड़ा होता है, चार नंबर बड़ा है तीन से, यानी वो तपस्वी से भी बड़ा होता है। और इसी चीज को हमने अभी पढ़ा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशन। भुक्ति क्या है, पहले नंबर पे, यानी कर्मी। मुक्ति क्या है, ज्ञान, दूसरे नंबर पे। सिद्धि क्या है, तपस्वी, यानी भक्त जो होता है वो इन सब से, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। वास्तव में केवल भगवान जो है वो श्लोक में केवल भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं, कि भक्त केवल इन समस्त, चाहे वो सिद्धि कामी हो, चाहे भक्ति मुक्ति कामी हो, चाहे भुक्ति कामी हो, वो सब कामनाओं से रहित होता है। वास्तव में भक्त का क्या मतलब होता है, भक्त का मतलब होता है कि कृष्ण को सरेंडर करना, कृष्ण की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा को सरेंडर करना, अपनी इच्छाओं का परित्याग करके कृष्ण की इच्छाओं को एक्सेप्ट करना, इसको बोलते हैं भक्ति। तो वैसे देखो, जिस तरह से अगर हम अपनी कोई भी चीज की अगर इच्छा करते हैं तो उसको बोलते हैं काम, लेकिन अगर हृदय के अंदर काम नहीं है और प्रीतम के लिए कोई कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। अब ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में कोई किसी का प्रेमी हो नहीं सकता। प्रेम जो है वो स्पिरिचुअल है, हम क्योंकि स्पिरिट है, आत्मा है, तो केवल स्पिरिट आध्यात्मिक वस्तु से ही प्रेम कर सकते हैं। भौतिक जगत की किसी वस्तु से हमारा इटर्नल प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कितनी देर तक रहेगा, जितनी देर तक हम इस शरीर में हैं, बस। अगर तुम भूल भी देते हो कि मैं सात जन्म तक तुम्हारा प्रेमी रहूंगा तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि उसके बाद आपको हो सकता है गधे की योनि मिले, और दूसरे को, जो दूसरा आपका प्रेमी जिसको भूल रहे हो, उसको हो सकता है कीड़े की योनि मिले। तो गधा और कीड़ा कभी आपस में प्रेमी नहीं बनते। ऐसा ही है ये भौतिक वस्तुओं से जो प्रेम, अभी आप हम ऐसे बोलेंगे नहीं, हमें अगले जन्म में भी मनुष्य देह मिलेगा, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि हमें मनुष्य देह मिलेगा, जब हमने मनुष्य जैसे कार्य ही नहीं किए संसार में आकर, वही आहार निद्रा भाई मैथुन में यदि हमने अपना समय गवाया है तो संभव ही नहीं है, इस बात का चांस ही नहीं। भगवान तो अभी भी वो जन्म देकर मनुष्य का पछता रहे होंगे कि खाम खाम में दे दिया इसको मनुष्य का जन्म, कार्य तो वही जानवरों जैसे कर रहा है, तो इससे बेहतर था कि जानवर ही क्यों ना बना दिया होता मैंने इसको, वही गोश्त खाना, मांसाहार करना, वाइन विमेन गैम्बलिंग मीट ईटिंग, ये सब मनुष्यों के कार्य थोड़े होते हैं, ये सब तो पशुओं के कार्य होते हैं। तो हम अगर वापस से मनुष्य जन्म उसको नहीं मिलता है जो ये कहता है कि मैं वापस से तुम्हारा सात जन्म तक साथ दूंगा, वास्तव में ये प्रेम नहीं होता है, ये केवल काम होता है, काम। और काम जब भगवान के साथ संबंधित हो जाता है तो वो प्रेम बन जाता है। जब तक भगवान के साथ नहीं किया जाता तो वो प्रेम नहीं होता है। इसी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम। यदि आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो तो उसका नाम है काम। कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। केवल और केवल यदि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो अब कार्य प्रेमी अगर आप भक्त भी बन जाते हो तो भी निष्काम नहीं होते, मतलब इच्छाएं आपकी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाएं डाइवर्ट हो जाती हैं। जिस तरह काम का अपोजिट क्या होता है, प्रेम, उसी तरह कामी का अपोजिट क्या होता है, प्रेमी। और प्रेमी हो अगर आप तो जाहिर सी बात है प्रेम प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते। आध्यात्मिक जगत में सब कोई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। यानी ये वास्तविकता है। जब कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में हर एक चीज चिन्मय है, एक फूल भी लगा हुआ है ना यदि तो पुष्प, वो पुष्प भी चिन्मय है, वो सब आध्यात्मिक लोक में हर वस्तु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। जब कृष्ण कितने सुंदर हैं, वो जब किसी फूल को देखते हैं, किसी पुष्प को खिला हुआ देखते हैं, तो पुष्प ऐसा लगता है कि कृष्ण कितना सुंदर है, मैं उसको प्रसन्न करने के लिए और भी अधिक खिल जाता हूँ, और भी अधिक सुंदर हो जाता है। मतलब उसके अंदर इतना भाव आ जाता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कि और भी अधिक सुंदर हो जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं आध्यात्मिक जगत में जानते हो, वो समस्त जो कुछ भी है वहां पर उसको आनंद देते हैं। तो कृष्ण जब देखते हैं कि पुष्प कितना खिल रहा है, मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो कृष्ण भी और भी सुंदर होके और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पुष्प जब देखता है कि कृष्ण इतना ज्यादा सुंदर है और वो मुझे प्रसन्न करने, वो इतना प्रसन्न हो रहा है मुझे देखकर, तो वो पुष्प और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। फिर कृष्ण क्या देखता है कि ये तो कितना और भी सुंदर हो गया है, तो इसको देखकर कृष्ण और भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं और उसको प्रसन्न करने। यानी आध्यात्मिक जगत में जीव कृष्ण को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करता है। केवल उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। और कृष्ण इतना प्रसन्न होते हैं जीव के प्रेम से, तो फिर वो भी कृष्ण भी उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। चाहे कोई भी वहां पर व्यक्ति होता है जो कृष्ण से प्रेम करता है, गोलोक वृंदावन धाम में जाता है, तो डायरेक्ट से कृष्ण उसको प्रसन्न करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये जो कृष्ण भक्ति है, हमारी जो कृष्ण मोमेंट, हरे कृष्ण मोमेंट है, उसमें जीव को मिलेगा क्या? ऐसे बोला जाता था कि जैसे अदर जो रिलीजन होते हैं उनको क्या होता है, अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, जन्नत में हो रहे होंगी और है ना आब जमजम होगा और जन्नत में क्या होगा, मतलब अय्याशी पूरी तरीके से मिलेगी आपको। तो हमारा जो धर्म है वो तो जैसे अगर भगवद गीता को उठाया जाए तो फौरन से जो लो क्वालिटी का भी भक्त होगा ना वो स्वर्ग में जाना नहीं चाहेगा। अगर भक्त है, अभी कनिष्ठ अधिकारी भी है, तो भी वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कहेगा क्षीण है पुण्य मृत्यु लोक मिशंति, फिर खत्म हो जाएंगे पुण्य और मुझे संसार में आना पड़ेगा, तो मुझे कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन धाम में। तो गोलोक वृंदावन धाम में जाकर भक्त को क्या मिलेगा, ये प्रश्न भी उठता ना। तो गोलोक वृंदावन धाम में भक्त को केवल कृष्ण प्रेम मिलेगा। और केवल कृष्ण, किसी को कोई कोई लगेगा कि केवल कृष्ण प्रेम मिलेगा, बाकी भौतिक सारी, क्योंकि वहां पर जाके भी हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। तो कोई ऐसा, किसी को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर भी भक्ति करें और वहां पर भी जाके हमें बस सेवा ही करनी है, स्वरूप हमारा दास का है तो दासत्व ही वहां पर भी स्वीकार करना, तो हम जो इतना सब स्ट्रगल कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, दासत्व ही मिल रहा है। तो कोई यदि ऐसा सवाल भी कर सकता है, वास्तव में भक्तों इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए क्या कि दासत्व हमारा अस्तित्व है। जो आपका कार्य है वही कार्य जब आप करोगे तब आप संतुष्ट होगे। भगवान ने भेजा है ना यहाँ पर कि जाओ भौतिक जगत में तो एंजॉय करके देखो। और फिर यहाँ तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि यदि आपने थोड़ी सी भी भक्ति कर दी तो भी क्या होगा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वाम शाश्वत, तो पुण्य कृताम स्वर्ग में करोड़ों साल के लिए भेज दिया जाएगा, जाओ करो मजा, जो एंजॉय करना है करो, लेकिन वहां पर भी आनंद आने वाला नहीं है। ये बात समझ में हमें समझनी पड़ेगी कि इंद्रिय भोग करके या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक लोक में जाकर भक्त आध्यात्मिक लोक में इसलिए नहीं जाता है कि वहां पर जाकर मुझे इस भौतिक कष्टों से संतुष्टि मिल जाएगी। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट यहाँ झेलते झेलते थक गया हूँ इसलिए मैं गोलोक वृंदावन धाम जाता हूँ। भक्त की ऐसी इच्छा नहीं होती है, भक्त की इच्छा ये होती है क्योंकि इस भौतिक जगत में मुझे कृष्ण की भक्ति करने का सु अवसर अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं इसलिए ये भौतिक जगत सुइटेबल नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसलिए मैं गोलोक वृंदावन धाम में जाना चाहता हूँ ताकि वहां पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति कर सकूं। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि गोलोक वृंदावन में जाकर हम अपना स्वरूप क्या चाहते, कैसा होना चाहिए हमारा स्वरूप, कैसी सेवा मिलनी चाहिए। कोई कोई लोग ऐसे कहते थे कि जब तक हम अगर गोपी भाव को प्राप्त करके वहां पर मंझारी नहीं बनते हैं तब तक समझो हमने सक्सेस नहीं किया भक्ति में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बताते। महाप्रभु कहते हैं कि कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्न, कि हे कृष्ण मुझे आपके श्री चरणों में लगी हुई धूल का एक कण बना दो। वास्तव में भक्तों गोलोक वृंदावन धाम में यदि भगवान के चरणों में लगी हुई एक धूल का कण भी बन जाएंगे ना तो समझो हमारे सारे जन्मों की सारी तपस्या सफल हो गई। ऐसा हमें सोचना चाहिए। वास्तव में भक्त को सदैव विनम्र रहना चाहिए और विनम्रता से भगवान को ये कहना चाहिए भले छोटे से छोटी भले कोई भी आप मुझे सेवा प्रदान करो ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है आपको प्रसन्न करना और यही है कृष्ण भक्ति, यही है कृष्ण प्रेम कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, अपनी इच्छा को इच्छाओं का परित्याग करके कृष्ण की इच्छा को संतुष्ट करना, ये है कृष्ण प्रेम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने पढ़ा कि हर एक चाहे वो कर्मी हो ज्ञानी हो या भुक्ति सिद्धि कामी जो भी तपस्वी है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है योगी, और कल हम उसी योगी को डिटेल से पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।